अब चलते हैं सूरह यूसुफ में। मौजू भी इतना प्यारा, औलाद और माँ बाप के ताल्लुक, रिश्ते, तरबियत, सब कुछ, और फिर सूरत यूसुफ भी आ जाए तो फिर ये तो सोने पे सुहागा है। इसलिए इन सारी चीज़ों के साथ अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार रखिए। चंद बातें सूरत यूसुफ पढ़ने से पहले, जिससे इंशाल्लाह फिर आपको पूरी सूरत अच्छे से समझ आएगी। पहले तो बात यह कि तरतीब में देखें तो 12वें नंबर की सूरत है, मक्की सूरत है। मक्की सूरतें ये भी चल रही हैं हमारे साथ, और यहाँ इसकी 52 आयात हैं। जो सूरत का नाम है ना, वही सूरत का मज़मून है। ये किस्सा पूरे कुरान में इधर ही है। आमतौर पर देखिए, जैसे सूरह बकरा थी तो गाय का तो एक बस वाक़या था ना, बाकी सूरत में कुछ और था। सूरत यूसुफ में सिर्फ हज़रत यूसुफ ही की कहानी है, और ये मक्का वालों के कुछ सवालों के जवाब पे नाजिल हुई थी। शकों को शुबात फैलाने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई को परखने के लिए अक्सर मक्का वालों को प्रवोक करते थे। ज़रा ये पूछो ना, ज़रा ये करो ना, फितने भी खड़े करने होते थे, कुछ ऐसी भी बातें पूछवा लेते थे जिसके बाद फितने का डर हो। खैर, एक सवाल जो पूछा गया और उसी के जवाब में सूरत यूसुफ नाजिल होती है। और सवाल क्या था कि बनी इसराइल मिस्र में कैसे आ गए, जबकि ये तो मुल्क शाम में होते थे। अंबिया किराम की सरजमीन तो मुल्क शाम थी। अल्लाह ताला ने उस पर ये पूरा किस्सा दिया। इस किस्से को अल्लाह ने खुद अहसनुल कसस कहा, यानी वो किस्सा जो हो भी सच्चा और जिसमें लेसन बहुत से हो, मॉरल्स एंड लेसन्स वाला किस्सा। इसमें आपको लाइफ टाइम लेसन्स मिलेंगे। असवाक़ ज़िंदगी है, क्या क्या चीज़ें हैं नोट कीजिए। तगैयुर और तबद्दुल, इसका फ़र्क। एक होता है कि आप एक चीज़ लेके उसकी जगह दूसरी दे देते हैं और वो किसी और को दे देते हैं, अलट पुलट करते हैं। आज ये बेडशीट इस कमरे में बिछा ली, एक उधर बिछा ली। एक तरह तो थी कि एक चीज़ ली और वो दे दी और उसकी जगह दूसरी ली। यही है तगैयुर और तबद्दुल। आपकी मेरी ज़िंदगी में अक्सर ऐसे ही तगैयुर और तबद्दुल आते हैं। ज़ाहिर आपको लगता है आपसे कुछ छिन रहा है, लेकिन वो मिल रहा होता है। किसी की शादी हुई, बहुत कुछ मिलने की उम्मीद थी, पता चला कुछ भी नहीं मिला। अब क्या है, ये तगैयुर बनेगा कि तबद्दुल बनेगा, ये आपके रवैये बताएंगे। जो अल्लाह के फ़ैसलों को कबूल कर ले, अल्लाह उसको हथेलियों पर रख लेता है, उसके लाड देखता है। इस पूरे पारे के अंदर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मुश्किलात उरूज का जीना साबित हो रही है। आगे ये सारा पारा इसी के इर्द गिर्द घूमना है। माँ बाप अच्छी तरबियत कर दें तो बच्चे बच्चियाँ गर्म सर्द हालात से आसन दर्जे पे गुजर जाते हैं, और फिर उनको मताए हसना मिलती है, मताए गरूर वो भूल जाते हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, जिनका तज़किरा अभी पीछे सुनाया और आपको 71 आयत हूद याद करवाई थी, वहाँ उनका तज़किरा था इसहाक़ और याकूब का। यहाँ उन्हीं के ख़ानदान की बात है। बनी इसराइल लफ्ज़ जो है ना, वो है ही इन्हीं की औलाद का नाम। 12 बेटों की 12 नस्लें थी और ये सब था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों की तरबियत कैसे की, इसके बावजूद कुछ बच्चों को वंस अपॉन अ टाइम शैतान बहका गया और उन्होंने हसद के जज्बे की वजह से अपने ही भाई की जान लेने की कोशिश की। लेकिन अल्लाह ने ना सिर्फ ये है कि उनको माफ़ कर दिया, बल्कि उनको नेक भी बना दिया और फिर उनको अच्छे काम करने की तौफीक भी दी। ये अभी शुरू में सीख लेंगे हम। क्या पता चला, इंसान को हमेशा पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहना चाहिए। हर किस्म के हालात से बेहतरीन नतायज निकालने की एबिलिटी रखी है बच्चों में, तरबियत का गहरा नुक्ता है। हर वक्त नेगेटिव ना हो, पॉजिटिव थिंकर हो। जो लड़कियां या बच्चियां या औरतें नेगेटिव थिंकर होती हैं, उनको सोने जैसा अच्छा भी शौहर मिल जाए, घर मिल जाए, वो खुश नहीं रहती, क्योंकि ये ससुराल है, क्योंकि ये हस्बैंड है। इसी तरह मर्दों का भी ये हाल है। अच्छी से अच्छी बीवी मिल भी की पसंद ही नहीं आ रही। तो इस पारे का इस थीम के साथ मटीरियलिज्म को रुकता जोड़ लीजिए। अपने बच्चों के रिश्ते ढूंढते हुए सिर्फ गोरी चिट्टी और उसकी खूबसूरत आंखें ना देखिए, और दूसरी तरफ लड़के का कमाऊ होना और अलग घर वाला होना ही ना देखिए। उनकी वो खूबियाँ देखिए जो भी आपको यूसुफ में दिखेंगी। लड़का हो तो पाक दामन हो, नज़र भी पाक हो, और लड़की देखें तो उसमें गुण भी हो और अपनी इज्जत इस्मत की हिफाजत करने वाली भी हो। फिर इसी तरह तकदीर ब मुकाबला तदबीर, ये भी सूरत में। वालदैन तदबीर के साथी होते हैं, तकदीर के नहीं। अपनी पूरी कोशिश करते हैं दी बेस्ट ढूंढने की, लेकिन वो दी बेस्ट उसके लिए दी बेस्ट बना है कि नहीं बना, ये अल्लाह का फैसला है। ये एक टेस्ट है कि अल्लाह आपकी मतान गरूर को मताए हसद में बदलना चाहता है। तो वालिदैन की महदूदियत दिखेगी। हर माँ बाप बच्चों के लिए बेहतरीन दुआएं करते हैं, बेहतरीन कोशिशें करते हैं, खिलाने पिलाने, पढ़ाने, तरबियत, एजुकेशन, फिर रिश्ते, शादियाँ, कारोबार, इसके बावजूद बच्चों को चोटें लग जाती हैं। हर माँ कहती है बच्चा ना गिरे, बच्चे गिरते हैं। तत्ती हवा ना लगे, तत्ती हवा लगेगी तो इसके अंदर की खैर बाहर आनी है। पॉपकॉर्न को चूल्हे पे ना रखें, आग में ना रखें, उसको माइक्रोवेव में ना रखें तो पॉपअप कैसे होगा? पॉप नहीं होगा तो खाएंगे कैसे? सूखे तो दांत ही तोड़ेंगे ना। तो आपके और आपकी औलाद के अंदर खैर होती है, लेकिन निकली नहीं, कुरान जो नहीं दिया। कुरान से खैर निकाल लें तो सदमों से अल्लाह वैसे ही बचा लेता है, इल्ला माशाल्लाह। फिर बुरे रिश्तेदारों के साथ कैसे सलूक करना है ये सूरत सिखा रही है। फिर अगली बात नोट कीजिएगा, बुरे लोग अच्छे हो जाते हैं, ये भी सूरत का एक बड़ा प्यारा सबक है। और अपोजिट भी है, आज के अच्छे कल बुरे भी हो जाएंगे। शादी के शुरू के बुरे बाद में अच्छे हो जाएंगे, और शुरू के अच्छे बाद में बुरे भी हो सकते हैं। शुरू में मियाँ बीवी बड़े खुश थे, बाद में कोई बिगाड़ आ सकता है, और शुरू में नहीं था तो बाद में, ये सब जानते हैं। ससुराल के जो जुल्म सितम है वो बर्दाश्त कर लीजिए, बाद में सांसें थक जाएंगी, बताएंगी नहीं। और आज बहू ज़रा एटीट्यूड दिखा रही है तो थोड़ा सा सब्र कर लें सासू अम्मा, ये बाद में बच्ची सीधी हो जाएगी, ये सिखाएगी सूरत। तो औलादों को नशेबो फराज के लिए तैयार कीजिए। जुमला लिखिए, ज़रूर ही कोई मुझसे बेहतर होगा, अगर किसी में मैंने कोई अच्छी चीज़ देखी जो मुझ में नहीं, तो हसद नहीं करना, बल्कि देखना क्या है कि इसमें क्या खूबी है कि अल्लाह ने इसको ये नेमत दी, बस उस खूबी को अपनाने की कोशिश कर लें। और अगर किसी की कोई ऐसी खूबी है जो उसके कमाल की नहीं, यानी शक्ल खूबसूरत है, कद अच्छा है, दौलत है, आप क्या करें? हाथ उठाकर उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह उसकी नेमत उसको मुबारक हो, सलामत रख, इसको अता कर और मुझे भी दे दें अगर मेरे हक में अच्छा है। हसद ना कीजिए, क्योंकि जो मकसूद का तो आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हाँ खुद ही अपनी आग में चलेंगे। फिर इसी तरह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख्वाब भाइयों से शेयर ना करने का मशवरा दे रहे हैं बाप। आप सब ने ये स्टोरी बीसियों बार पढ़ी है, इसलिए मैं शुरू में दे रही हूँ आपको। तो लिखिए, अपनी नेमतों का शो ऑफ ना करें। बाज़ लोग अज़हर मिन शम्स, सूरज से भी ज़्यादा अपनी नेमतों को दिखाते हैं, जिससे हसद भी पैदा होता है और फिर रकाबत भी आती है और शैतान को शर फैलाने का मौका मिल जाता है। फिर याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे को मना कर रहे हैं कि अपना अच्छा ख्वाब भाइयों को ना बताना, इससे वो रुक के लिखवा रही हूँ, दूसरे बेटों को भी गुनाह से बचा रहे हैं। समझ आ रही है? यूसुफ से हसद करके वो बेटे गुनाहगार होंगे ना, तो का ना बताओ, ये भी एक तरबियत का खूबसूरत नुक्ता है। ख्वाबों की भी कुछ बातें आएंगी, तो एक जुमले में काफ़ी है कि ख्वाबों के बारे में अमूमन खामोश रहिए, दैट्स इट, क्योंकि वो हमारी किस्मत को नहीं बदल सकते। हमें कभी कभी वार्निंग मिल जाती है, कभी खुशखबरी मिल जाती है। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने जब भाई को कुएं में डालना था तो क्या कहा कि आज इसको मार दो, बाद में क्या हो जाना? नेक हो जाना। तो कून मिन सालिहीन। इससे पता चलता है पूरे किस्से में सिर्फ एक जुर्म आपको भाइयों का दिखा है कि भाई को पकड़ के कुएं में डाल दो, और इसके पीछे हसद और शैतान था, ओवरऑल बुरे नहीं थे। इसीलिए अल्लाह ने उनको अच्छा कर दिया। उलमा कहते हैं कि क्योंकि इनकी नीयत अच्छी थी कि हम बाद में अच्छे हो जाएंगे, तो अच्छे हो गए। आप भी अपने आप से मायूस ना हो। अगर आपको एहसास है ना कि आप कोई काम गलत कर रही हैं, तो साथ ही कह दें अल्लाह मुझे अच्छा कर दे। अल्लाह ने उनको उनकी नीयत के मुताबिक अच्छा कर दिया, और उनको एहसास था कि वो गलत कर रहे हैं, तो एहसास जब मिट जाता है ना, फिर गड़बड़ होती है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके अलग से कई दफ़ा तफसीर की है, 100 लेसन्स फ्रॉम सूरत यूसुफ। यंग बच्चों के लिए हम करते हैं ये कोर्स 7-8 दिन का गालिबन, तो इस तरह से तफसीरों से आप फ़ायदा उठा लें। लेकिन आइए ज़रा अब इस किस्से को किस्से की तरफ पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा, तिलका आयातुल किताबिल मुबीन। حروف مقطعات یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں، یقیناً ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا ہے کہ تم سمجھ سکو۔ ہم آپ کے سامنے بہترین بیان پیش کرتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم نے آپ کی جانب یہ قرآن وحی کے ذریعے نازل کیا ہے، اور یقیناً اس سے پہلے آپ بے خبروں میں سے تھے۔ جبکہ یوسف نے اپنے باپ سے ذکر کیا کہ ابا جان، میں نے 11 ستاروں کو اور سورج چاند کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، پیارے بیٹے، اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کوئی فریب کاری کریں۔ شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے، اور اسی طرح تجھے تیرا پروردگار برگزیدہ کرے گا، اور تجھے معاملہ فہمی یا خوابوں کی تعبیر بھی سکھائے گا، اور اپنی نعمت تجھے بھرپور عطا فرمائے گا، اور یعقوب علیہ السلام کے گھر والوں کو بھی، جیسے کہ اس نے تیرے دادا اور پردادا یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کو بھی بھرپور اپنی نعمت دی۔ یقیناً تیرا رب بہت بڑے علم والا اور زبردست حکمت والا ہے۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، اصل قصہ اب یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ یقیناً یوسف اور ان کے بھائیوں میں پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، جبکہ انہوں نہ کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی بنسبت ہمارے باپ کو بہت زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم طاقتور جماعت ہیں، کوئی شک نہیں کہ ہمارے ابا سری غلطی میں ہیں۔ اب ذرا انداز نوٹ کیجئے بگڑی ہوئی اولاد کا، جب ان سے شیطان غلط جملے کہلوا دے، اقتلوا یوسف، یوسف کو مار ہی ڈالو، یا اسے کسی نامعلوم جگہ پر پھینک دو کہ تمہارے والد کا رخ صرف تمہاری طرف ہی ہو جائے، اس کے بعد تم نیک ہو جانا۔ نوٹ کیا جملہ؟ ہم بھی بہت سارے کام یہی سوچ کے کرتے ہیں اور پھر نیک ہوتے بھی کوئی نہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ اسے کسی اندھے کنویں کی تہہ میں ڈالو کہ اسے کوئی آتا جاتا قافلہ اٹھا لے جائے، اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یوں کرو۔ نوٹ کیجئے، زیادہ بروں میں سے ایک کم برا، اس کی بھی اللہ نے قدر کی، یعنی قتل کی بجائے کنویں میں ڈال دو۔ کچھ اسی قسم کی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، تو یہاں لکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یوسف علیہ السلام کا تقابل۔ اللہ کے نبی کی جان لینے کی کوشش کی گئی، ہجرت کا ذریعہ بنی۔ اللہ نے آپ کو اپنے گھر سے نکال کر 3 راتوں کے لیے غار ثور میں ڈال دیا، آپ کے ساتھ ابو بکر بھی تھے۔ یوسف علیہ السلام کے بھی قتل کے منصوبے ہو رہے ہیں، یا اللہ ان کو بھی یہاں سے نکال کر کنویں میں رکھے گا۔ اللہ کے نبی غار ثور سے نکل کر مدینہ گئے، جو کامیابیوں کا دروازہ ثابت ہوا۔ یوسف کو بھی یہاں سے اللہ مصر لے کے جائے گا، جہاں ان کی دنیا کی بھی کامیابیاں اور آخرت کی کامیابیاں ہوں گی۔ بہت پیارا ربط ہے، آگے بھی جا کر انشاءاللہ دیکھیں گے کیا کہا۔ قالوا یا ابانا ما لکا، اب ذرا بیٹوں کا باپ سے انداز دیکھیے بات کرنے کا۔ انہوں نے کہا، ابا، آخر آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، کل آپ اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ خوب کھائے پیئے اور کھیلے، اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ دل میں کچھ، زبان پہ کچھ، اکثر رشتہ داروں میں ایسے ہی معاملات ہو رہے ہوتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، اسے تمہارا لے جانا مجھے تو سخت صدمہ دے گا، اور مجھے یہ بھی کھٹکا لگا رہے گا کہ تمہاری غفلت میں اسے بھیڑیا کھا جائے۔ اس کو کہتے ہیں سکس سینس۔ یعقوب علیہ السلام کے دل میں کھٹکا تھا، وہ کام ہوا تو خرابی ہوئی۔ علماء کہتے ہیں جس کام کے کرنے میں کھٹکا ہو نا، وہ نہ کیجیے جب تک استخارہ کر کے دل نہ ٹھک جائے۔ انہوں نے جواب دیا، ہم جیسی زور آور جماعت کی موجودگی میں بھی اگر اسے بھیڑیا کھا جائے تو ہم بالکل ہی نکمے ہوئے۔ پھر جب اسے لے چلے اور سب نے مل کر ٹھان لیا کہ اسے غیر آباد کنویں کی تہہ میں پھینک دے، ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ یقیناً وقت آ رہا ہے کہ تو انہیں اس ماجرے کی خبر اس حال میں دے گا کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں۔ کیا پتہ چلا، بندہ مومن کو دکھ کے وقت میں، تکلیف کے وقت میں بھی اللہ پرسکون رکھتا ہے۔ خوشخبریاں، یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈال دیے گئے لیکن بے سکون نہیں کر سکے۔ یعقوب علیہ السلام کی 6ٹی خستی کے بھیڑیا نہ کھا جائے، اور وہی ہوا۔ اس لیے کبھی دشمن کو اپنا ویک پوائنٹ نہیں دینا چاہیے، چونکہ انہوں نے کہہ دیا بھیڑیا نہ کھا جائے تو بیٹوں نے بعد میں وہی بات پکڑ لی۔ کیا پتہ چلا کہ تقدیر کا لکھا غالب آتا ہے، آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں اللہ کی بات غالب ہوتی ہے، اس سہارے سے کام کیا کریں۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے اور مطمئن تھے، کیونکہ انجام بخیر ہونا تھا۔ بھائی کنویں میں ڈال کر آئے تھے، خود باہر تھے، लेकिन गैर मुतमईन थे, क्योंकि गुनाह की एक कसक होती है, गुनाह का एक कटका होता है। अब आगे से ज़रा सा हज़रत याकूब का बहसियत वालिद किरदार देखिएगा, कैसे वो अपने बच्चों के साथ डैमेज कंट्रोल करते हुए दिखते हैं। क्योंकि अगर एक बेटे के जाने पे बाकी बेटों को काट देते तो फिर जो सदमा था ना, वो 11-12 गुना हो जाना था। इन्होंने एक हिकमत वाले समझदार बाप होने की सूरत में क्या किया, आइए ज़रा इसको पढ़ते हैं। फलम्मा ज़हबू बिही, फिर जब इसे ले चले और सब मिलकर ठान दिया कि इसे गैर आबाद गहरे कुएं की तह में फेंक दें, हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह वही की कि यकीनन वक्त आ रहा है तो इन्हें इस माजरे की खबर इस हाल में देगा कि वो जानते भी ना होंगे। और इशा के वक्त सब अपने बाप के पास रोते हुए पहुँचे और कहने लगे, अब्बा जान, हम तो आपस में दौड़ में लग गए और यूसुफ को हमने इस बाप के पास छोड़ा, बस इसे भेड़िया खा गया, आप तुम्हारी बात ना मानेंगे। देखिए ब्लेमिंग स्टाइल है, दिल में चोर होता है ना तो बंदा पहले से कॉन्शियस होता है। गो कि हम बिल्कुल ही सच्चे हों, आयत 17 पे अल्हम्दुलिल्लाह सलास हुआ। आगे देखिए इनकी क्या टेक्निक थी, बजाओ अला कमीसिही बिदमिन कज़िब, और यूसुफ के कुर्ते को झूठ मूठ के खून से आलूदा भी कर लाए। बाप ने कहा, यूँ नहीं बल्कि तुमने अपने दिल ही से एक बात बना ली है, पर सब्र ही बेहतर है, तुम्हारी बनाई हुई बातों पर अल्लाह ही से मदद की तलब है। क्या पता चला अनाड़ी थे, कुर्ता फाड़ना भूल गए और खून लगा दिया। भई ये कैसा मुहज़्ज़ब भेड़िया है जिसने पहले कमीज़ उतारी, फिर यूसुफ को खाया और फिर उसका खून लगाया। तो याद रखिए कि झूठ झूठ ही होता है। ये तो बाप के साथ झूठ मूठ बातें थी। अब देखिए आमतौर पर रिश्तों में यही कुछ हो रहा होता है, दिल में कुछ और होता है, ज़ुबान पे कुछ और होता है। और शैतान ने चूँकि बेकार दिया था तो भाई का कत्ल आसान हो गया। हसद इतनी बुरी चीज़ है, इससे बचिए। उधर देखिए यूसुफ़ के साथ क्या हो रहा है, वह जहाज सही आ रहा हूँ और एक काफिला आया और उन्होंने अपने पानी लाने वाले को भेजा, इसने अपना डोल लटका दिया, कहने लगा, वाह वाह क्या बात है, ये तो एक लड़का है, उन्होंने इसे माले तिजारत करार देकर छुपा दिया और अल्लाह ताला इससे बाखबर था जो वो कर रहे थे, और उन्होंने इसे बहुत ही हल्की कीमत पर गिनती के चंद दिरहमों पर बेच डाला। वो तो यूसुफ के बारे में बहुत ही बेरगबत थे। यहाँ नोट कीजिए, अपनी बेटियों को इस काबिल कीजिए कि अगर अगले घर जाकर उनकी नाकदरी की जाए तो ट्रॉमा में ना चली जाए। कितनी बच्चियां माँ बाप की आंखों का तारा होती हैं लेकिन ससुराल में जाकर बिल्कुल खसोखाशाक की तरह हो जाती हैं। जैसे यूसुफ इतने कीमती बच्चे थे, ख्वाब देखा हुआ था लेकिन चंद टकों के बस बिक गए। लेकिन ये जो आपकी कीमत थोड़ी लगती है ना, ये आपको मज़ीद कीमती करने के लिए होती है, टोकन होता है सिर्फ, असल बात तो बाद में होने वाली होती है। यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के फ़ैसलों पे राज़ी रहे, इसलिए क्या हुआ, वक़ाल लज़िश तराहु मिन मिस्र, मिस्र वालों में से जिसने इन्हें ख़रीदा उसने अपनी बीवी से कहा कि इसे बहुत इज्जत और एहतराम के साथ रखिए, बहुत मुमकिन है कि हमें फ़ायदा पहुंचाए या हम इसे अपना बेटा ही बना लें। यूँ हमने मिस्र की सरजमीन पर यूसुफ का कदम जमा दिया। इसको हाईलाइट कीजिए कि हम इसे ख्वाब की ताबीर का कुछ इल्म सिखा दें। और बात क्या है, वल्लाहु ग़ालिबुन अला अम्रिही वलाकिन अक्सरुन नास ला यालमून, अल्लाह अपने इरादे पर गालिब है लेकिन अक्सर लोग बेइल्म होते हैं। किस बात में, किस शर में से अल्लाह ने बाद में कितनी बड़ी खैर निकालनी है। वलम्मा बलगा शुद्दहू, अब एकदम सीन पलटता, यूसुफ जवान हो गए। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम पुख्तगी की उम्र को पहुंच गए, हमने उनको कुव्वत फैसला और इल्म दिया, हम नेकुकारों को इसी तरह बदला देते हैं। लिख लें, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, कह तो सकते थे ना, 7-8 साल की उम्र थी, कोई बेबी तो नहीं थे। खामोश तो लिखे, जो रदी तो बिल्लाही रब्बन कह देता है, रब की रज़ा पे राज़ी हो जाता है, अल्लाह ताला उसको मोहसिन बना देता है, अल्लाह उसको फिर हिकमतें दे देता है, कुव्वत फैसला दे देता है, समझ में भी ना बात आए अल्लाह उसको वो समझ दे देता है। तो तदब्बुर और अमल की बातें, नसरेबाद और हसद से अल्लाह की बना मांगनी है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें बहुत सी मुसीबतों का सबब है। हत्ता के हदीस है कि नजरेबाद ऊँट को हांडी तक और इंसान को कब्र तक पहुँचा देती है। तो ज़्यादा एक्सपोजर ना कीजिए नेमतों का, और लोगों को भी अदब सिखाइए कि माशाल्लाह कहा करो, बरकत की दुआ दिया करो। झूठ बोलने सुनने और झूठ में शामिल होने से अल्लाह की बना मांगनी है। गमों पर बेहतरीन तरीके से सब्र करें, शिकवा या किसी से मलामत ना करें। कुरान करीम से फ़ायदा इसी वक्त उठा सकेंगे जब फ़ायदा उठाने की नीयत से सुनेंगे। इबादत में एहसान के दर्जे तक पहुँचना है। अल्लाह की हिफाजत मदद और ज़मीन पर गलबे के असबाब में से है। तकदीर पर ईमान जितना मजबूत होगा तो मुसीबत पर सब्र करना उतना आसान होगा, क्योंकि जब तक अल्लाह ना चाहे कोई मुझे तकलीफ़ दे नहीं सकता। गौर व फिक्र की बातें, अपनी नेमत को छुपाना है यहाँ तक कि वो मिल जाए या खुल कर सामने हो आ जाए। यदि अभी नेमत हाथ में नहीं तो पहले शोर मचा दिया, बेबी आ रहा बेबी आ रहा, ना आया तो क्या होगा, आके चला गया तो क्या होगा। कई लोग आज पहले से बेबी शावर और पता नहीं क्या फजूल हरकतें करते हैं। नहीं कीजिए, अल्लाह से ताल्लुक़ और बढ़ा लें कोई नेमत मिले तो। एक गुना अपने पीछे कई गुनाहों को समेट लाता है। ज़ाहिर पहले भाई को कुएं में डाला तो फिर उसके बाद झूठ पे झूठ बोलने पड़े। सब्र जमील क्या होता है। अपनी तकलीफ़ का रोना ना रोना, मुसीबत को बयान ना करना और अपनी तारीफ़ें ना करना। बहुत प्यारी तारीफ़ की है आइमा में से एक इमाम, सॉरी थे नाम उनका लिख लें। वो कहते हैं कि सब्र जमील क्या है, तीन चीज़ें। नंबर एक, ला शिकवा फीहा, उसमें शिकवा और शिकायत नहीं होता। हम सारे शिकवे करके जब गला थक थक जाता है फिर कहते हैं अच्छा अब सब्र करते हैं। नंबर दो, सब्र की वजह से खुद को काबिले तारीफ़ न समझना। हम सब्र करते फिर एक एक को बताते, मजलूमियत की तस्वीर बनते ताकि लोग कहें हाय आप कितनी साबिर हैं, आपने कितना सब्र किया अपने ससुराल में। जब तारीफ़ के बदले सब्र लोगों के हाथ बेच दिया तो अल्लाह से क्या मिलना है आपको, बिकी हुई चीज़ दोबारा थोड़ी बिकती है। तीसरा दर्जा, उम्मीद का दामन न छोड़ना, यानी हालात के बेहतर होने का इंतज़ार करना। कोशिश करते रहिए, अल्लाह सब्र देगा। सब्र सब्र से आता है, और सब्र ये भी है कि इस काम से ख़ुद को रोकना जिससे अल्लाह नाराज़ हो, नफ्स को अपनी मर्ज़ी ना करने देना, हाथों को गलत कामों से रोकना, ज़ुबान को गलत चीज़ से रोकना भी सब्र है। ज़रा सोचिए, याकूब अलैहिस्सलाम की जगह कोई और बाप होता तो मार मार के धुनक ना देता। नहीं, लिखिए बिगड़ी हुई औलाद के साथ कैसे सब्र किया जाए ये सिखाया जा रहा है। पहले पारे में आपने हज़रत याकूब का एक अमल देखा था, वैस बसा को जब याकूब ने अपनी औलाद को एक नसीहत की थी, क्या माँ ताबू न मेम्बादी, मेरे बाद किसकी इबादत करोगे। वो आखिरी स्टेज थी, ये ज़िंदगी भर की बात है। हम चाहते हमारे मरने के बाद औलादे नेक हो जाएँ। हज़रत याकूब दिखा रहे हैं कि ज़िंदगी में ही बिगड़े हुए बच्चों को नेकियों की रग़बत दीजिए और उनकी गलतियों से सरफे नज़र करते हुए उनको नसीहत दीजिए। हम कभी कभी दीन के नाम पर ऐसे तरीके से भी बच्चों से पेश आते हैं, अल्लाह की पनाह, वो मुतनफ़िर हो जाते हैं, भाग जाएंगे। तो बच्चों को अब सिखाते हैं ना कि बड़ों की इज़्ज़त करें, तो लिखिए बड़ों को भी सीखना है कि बच्चों की इज़्ज़त करें, सासों को भी सीखना है कि बहुओं की इज़्ज़त करें, माओं को भी सीखना है कि बेटियों की इज़्ज़त करें। और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ये सारी बातें हमेशा हमें अपने अमल पे नज़र डालने वाली बना देती हैं। इसी तरह हर भले और नेक आदमी को रोशनी, इल्म और हिकमत का हिस्सा मिलता है जितना वो काबिल होता है। आगे आए 23 से 37, यूसुफ़ की ज़िंदगी का एक और रूप, मोहब्बतों से नफ़रतें, नफ़रतों से मोहब्बतें, अरूज और ज़वाल की कहानी है। वरावत हुल्लती हुआ फ़ी बैती हा नफ़्सी, इस औरत ने जिसके घर में यूसुफ़ थे, यूसुफ़ को बहलाना फिसलाना शुरू किया कि वह अपने नफ्स की निगरानी छोड़ दे, और दरवाज़ा बंद करके कहने लगी हई तलक, आओ आ जाओ, गुनाह की दावत दी। قال معاذ الله, यूसुफ़ ने कहा अल्लाह की पनाह, इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाज, वो मेरा रब है जिसने मुझे बड़ी अच्छी तरह रखा, बेइंसाफ़ी करने वालों का भला नहीं होता। वलकद हम्मत बिही व हम्म बिहा, इस औरत ने यूसुफ़ की तरफ का कसद किया और यूसुफ़ भी इसका कसद करते अगर वह अपने परवरदिगार की दलील ना देखते। यूं ही हुआ कि हम इससे बुराई और बेहयाई दूर कर दें, बेशक वो हमारे चुने हुए बंदों में से था। सुभानअल्लाह, बहुत ही प्यारी हदीस नोट कीजिए, अबू दाऊद की रिवायत है 4776। नेक चलन, उम्दा किरदार और मियाना रवी, नबूवत का 25वां हिस्सा है। इन्नल हज्ज सालेहा व समत सालेहा والاقتصاد جزء من 25 جزء من النبوة. واستبق الباب، دونوں دروازے کی طرف دوڑے. کیوں؟ ایک گناہ کے لیے اور دوسرا گناہ سے دور بھاگا. نیت کا فرق ہے، بھاگ دوڑ سب کی ایک ہی ہے، کوئی متاع حسن کی طرف ہے اور کوئی متاع غرور کی طرف. وقدت قمیصہ من دبر، اور اس عورت نے یوسف کا کرتا پیچھے کی طرف سے کھینچ کر پھاڑ ڈالا اور دروازے کے پاس اس کا شوہر دونوں کو مل گیا تو کہنے لگی، جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے بس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا اور کوئی دردناک سزا دی جائے. یوسف نے کہا، یہ عورت ہی مجھے پھسلا رہی تھی اور عورت کے قبیلے کے ہی ایک شخص نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے کی جانب سے پھاڑا گیا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچوں میں سے ہے. خاوند نے جو دیکھا کہ یوسف کا کرتا پیٹھ کی جانب سے پھاڑا گیا ہے تو صاف کہہ دیا، یہ تو عورتوں کی چال بازی ہے، یعنی اس کو سوجھ گیا کہ میری بیوی کا ہی قصور ہے. بے شک تمہاری چال بازی بہت بڑی ہے. یوسف اب اس بات کو آتی جاتی کر، ارے عورت اپنے گناہ سے توبہ کر، بے شک تو گناہ گاروں میں سے ہے. دیکھیں، شوہر ہونے کے ناطے بات کی حقیقت کو سمجھ گیا تھا لیکن اپنی عزت اور شرف اور متاع غرور کی وجہ سے بات کو دباتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ آپ چھوڑ دیں، یعنی اس کو ایزی لیا، اس فائن کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن بات کہاں چھپتی ہے، ایسی باتیں تو نظر آتی ہیں. وقال النسوہ، اور شہر کی عورتوں میں چرچا ہونے لگا کہ عزیز کی بیوی اپنے جوان غلام کو اپنا مطلب نکالنے کے لیے بہلانے پھسلانے لگی رہتی ہے. اس کے دل میں یوسف کی محبت بیٹھ گئی ہے. یہ جملہ ہائی لائٹ کر لیں، قد شغفہا حبہ. ہمارے خیال میں تو وہ سری گمراہی میں، یعنی گھر گھر اس کی باتیں ہونے لگی، ناکام بھی ہوئی اور بدنام بھی ہوئی. کیا ملا بیچاری کو؟ فلما سمعت بمکرہن، اس نے جب ان کی ان پرفریب غیبتوں کا حال سنا تو انہیں بلوا بھیجا اور ان کے لیے ایک مجلس مرتب کی اور ان میں سے ہر ایک کو چھری دی اور کہا، یوسف ان کے سامنے چلے آؤ. ان عورتوں نے جب اسے دیکھا تو بہت بڑا جانا اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور زبانوں سے نکل گیا، حاشا للہ، یہ انسان تو ہرگز نہیں، یہ تو یقیناً کوئی بہت ہی بزرگ فرشتہ ہے. اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے کہا، یہی ہیں جن کے بارے میں تم مجھے تانے دے رہی تھی، میں نے ہر چند اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا لیکن یہ بال بال بچا رہا. کیا یہ اقرار جرم نہیں ہے؟ دوستوں کی محفل میں عورتیں اکثر اپنے جرم کھول دیتی ہیں. اگر یہ جملہ پولیس کے سامنے بولتی تو جیل میں جاتی، شوہر کے سامنے جاتی تو طلاق لے لیتی. تو دوستوں کی محفلوں میں ذرا سا محتاط بات کریں، اور جو کچھ میں اسے کہہ رہی ہوں اگر یہ نہ کرے گا تو یقیناً یہ قید کر دیا جائے گا اور بے شک یہ بہت ہی بے عزت ہوگا. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اب یوسف کی زندگی کا وہ امتحان دیکھیے. قال رب السجن احب الی مما یدوننی الی. یوسف نے دعا کیا، میرے پروردگار، جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے جیل خانہ بہت پسند ہے. جی، اگر تو نے ان کا فریب مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور بالکل نادانوں میں جا ملوں گا. فاستجاب لہ ربہ فصرف عنہ. اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کے داؤ پیچ اس سے پھیر دیے، یقیناً وہ سننے والا جاننے والا ہے. پھر ان تمام نشانیوں کے دیکھ لینے کے بعد بھی انہیں یہی مصلحت معلوم ہوئی کہ یوسف کو کچھ مدت کے لیے قید خانے میں رکھیں. بے گناہ یوسف قید میں چلا گیا، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے. بدخل ماخ سجن فتیان، اس کے ساتھ ہی دو اور جوان بھی جیل خانے میں داخل ہوئے. ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو شراب نچوڑتے دیکھا ہے، اور دوسرے نے کہا میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جسے پرندے کھا رہے ہیں. ہمیں آپ اس کی تعبیر بتلائیے، ہمیں تو آپ خوبیوں والے شخص دکھائی دیتے ہیں. یوسف نے کہا، تمہیں جو کھانا دیا جاتا ہے اس کے تمہارے پاس پہنچنے سے پہلے ہی میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا. یہاں بھی تبلیغ کا خوبصورت نقطہ کہ جب لوگوں کو آپ سے کوئی کام ہو تو اس وقت ان کو دین کی دعوت دیجئے، غور سے سنیں گے. یہ سب اس علم کی بدولت ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے. میں نے ان لوگوں کا مذہب چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے بھی منکر ہیں. تو یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے نفع کا بنا دیا. یہ نوٹ کیجئے، عمل کی باتیں، خوشحالی اور تنگ دستی کے فتنوں اور برے لوگوں کی سازشوں سے اللہ کی پناہ مانگیے. अल्लाह ताला से सवाब की उम्मीद रखते हुए इस मजलिस से दूर हो जाएं जिससे आपको गुनाह की रग़बत मिलती हो, ख़ास तौर पे अपनी कोई दोस्त या सहेलियों का गिरोह जहाँ बैठकर गलत काम देखने करने सुनने को दिल चाहे। लोगों के साथ एहसान का मामला करें, यह आपके लिए खैर और कबूलियत का बायस होगा। कुरान से रहनुमाई, मुश्किल और तंगी में अल्लाह की मदद पाने के लिए खुशहाली में अल्लाह की इताअत करनी है। ज़िना और फहाशी का अंजाम नाकामी, नुकसान और ज़िल्लत है। गुनाह से बचना है क्योंकि इल्म की कमी जहालत नहीं बल्कि हकीकी जहालत बकसरत गुनाह है, जिसको कहते हैं लोग पढ़े लिखे जाहिल। गौर फिक्र के गोशे, इखलास शैतान के तसल्लुत और गलबे से बचाता है, इसको बढ़ाने की कोशिश करनी है। गुनाहों और नाफरमानियों के मुकाबले में कैदों बंद और इब्तलाओ आजमाइश को इख्तियार कर लेना चाहिए। फितने और गुनाह वाली जगह से दूर हो जाना चाहिए। जिस मामले में बंदा मुश्किलात का सामना करता है वो इंजाम के लिहाज से अच्छा और जवाबदही के लिहाज से हल्का और आसान होता है। शर्त क्या है कि सब्र जमील किया जाए। अब आखिरी हिस्सा पारे का आयत नंबर 38 से, वत्तबअ्तु मिल्लत आबा इब्राहीम व इसहाक व याकूब। अब ये तबलीग है और इसमें तबलीग का नुक्ता नोट कीजिए कि तौहीद की दावत दी है, इधर उधर की चीज़ों में नहीं डाला। मैं अपने बाप दादाओं के दीन का पाबंद हूँ, यानी इब्राहीम इसहाक और याकूब के दीन का अलैहिस्सलाम। हमें हरगिज़ ये लायक नहीं कि हम अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक करें। हम पर और तमाम और लोगों पर अल्लाह ताला का ये ख़ास फजल है, लेकिन अक्सर लोग नाशुक्री करते हैं। ऐ मेरे क़ैद खाने के साथियों, क्या मुतफारिक का एक परवरदिगार बेहतर है या एक अल्लाह ज़बरदस्त ताकतवर? शऊर को बेदार किया जा रहा है ताकि वो खुद सोचें। सिर्फ बोलने वाले ही बोलता जाए तो अगले सिर्फ सुनते नहीं बल्कि सो भी जाते हैं, तो इंटरेक्टिव तबलीग होनी चाहिए। इसके सिवा तुम जिनकी पूजा पाठ कर रहे हो वो सब नाम ही नाम हैं जो तुमने और तुम्हारे बाप दादाओं ने खुद ही कर लिए। यही करने वाले, मुश्किल कुशा और इस तरह के नाम नहीं देने चाहिए बुज़ुर्गों को। अल्लाह ताला ने इनकी कोई दलील नाजिल नहीं फरमाई, फरमा रवाई सिर्फ अल्लाह ताला की है। इसका फरमान है कि तुम सब सिवाय इसके किसी और की इबादत न करो, यही दुरुस्त दीन है। वलाकिन अक्सर अन्नास ला यालमून, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। या साहिब, आप देखिए प्यार और अंदाज़ देखिए यूसुफ़ का कितना दिलों को मोह लेने वाला है। ऐ मेरे क़ैद खाने के रफ़ीको, तुम दोनों में से एक तो अपने बादशाह को शराब पिलाने पर मुकर्रर हो जाएगा। अब तबीर है, पहले तबलीग थी, लेकिन दूसरा सूली पर चढ़ाया जाएगा और परिंदे इसका सर नोच नोच कर खाएंगे। तुम दोनों जिसके बारे में तहकीक कर रहे थे इस काम का फ़ैसला कर दिया गया, और जिसकी नस्बत यूसुफ़ का गुमान था कि इन दोनों में से ये छूट जाएगा, इससे कहा कि अपने बादशाह से मेरा ज़िक्र भी कर देना, फिर इसे शैतान ने अपने बादशाह से ज़िक्र करना भुला दिया। ये शैतान का एक वार है कि नेकियाँ भुलवा देता। और यूसुफ ने कई साल क़ैद खाने में ही काटे। यह है तकदीर बमुकाबला तदबीर। तदबीर की यूसुफ ने, लेकिन तकदीर गालिब आ गई। अब अल्लाह ने जब हालात को पलटा देना था तो बादशाह को एक ख्वाब दिखाया। वक़ाल अल मलिक, बादशाह ने कहा, मैंने ख्वाब देखा है कि 7 मोटी ताज़ा फरबा गायें हैं जिनको 7 लागर दुबली पतली गायें खा रही हैं, और 7 बालियाँ हैं हरी हरी और दूसरी 7 बिल्कुल खुश। ए दरबारियो, मेरे इस ख्वाब की ताबीर बतलाओ अगर तुम ख्वाब की ताबीर दे सकते हो। उन्होंने जवाब दिया, ये तो उड़ते उड़ाते परेशान ख्वाब हैं, और ऐसे शोरीदा परेशान यानी असगासुल अहलाम ख्वाबों की ताबीर जानने वाले हम नहीं। इन दो कैदियों में से जो रहा हुआ था इसे मुद्दत के बाद याद आ गया और कहने लगा, मैं तुम्हें इसकी ताबीर बता दूंगा, मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। जब काम पड़ता है तो बंदा भी याद आ जाता है, पहले भूला रहा। ऐ यूसुफ है बहुत बड़े सच्चे यूसुफ। देखिए जेल में चले गए यूसुफ, लेकिन बेइज्जत नहीं हुए। अल्लाह ने उनकी इज्जत पे हरफ नहीं आने दिया क्योंकि बेगुनाह थे। आप हमें इस ख्वाब की ताबीर बतलाइए कि 7 मोटी ताज़ी गायें हैं जिन्हें 7 दुबली पतली गायें खा रही हैं, और 7 सब्स खोशे हैं और 7 ही बिल्कुल खुश्क हैं, ताकि मैं वापस आकर इन लोगों से कहूँ कि वो सब जान लें। यूसुफ ने जवाब दिया कि तुम 7 साल तक पैर दर पे लगातार हसब आदत गल्ला बोया करना और फसल काट कर इसे बालियों समेत ही रहने देना, सिवाय अपने खाने की थोड़ी सी मकदार के। इसके बाद 7 साल नहायत सख्त कहत के आएंगे और वो इस गल्ले को खा जाएंगे जो तुमने इनके लिए ज़खीरा रख छोड़ा था, सिवाय इस थोड़े के जो तुम रोक रखते हो। इसके बाद जो साल आएगा इसमें लोगों पर खूब बारिश बरसाई जाएगी, और इसमें शीरा या अंगूर यानी अंगूर का जूस भी खूब निचोड़ेंगे। और बादशाह ने कहा, इसे मेरे पास लाओ। जब कासिद यूसुफ के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा, अपने बादशाह के पास वापस जा, यानी नहीं निकले, क्योंकि अभी निकलते ना तो सिर्फ आज़ादी मिलती, थोड़ी देर बाद निकलेंगे तो साथ हुक्मरानी भी मिलेगी, ये सब्र का बदला है। बादशाह के पास वापस जाओ, इससे पूछो कि इन औरतों का हकीकी वाक़या क्या है, उन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। इनके हीले को सही तौर पर जानने वाला मेरा ही परवरदिगार है, यानी मेरे मुकदमे की तहकीक कराएं। लेकिन देखिए, औरतों का जुर्म नहीं बताया, ये भी एक मुहसिन का हक है। कह दिया हाँ हाथ काटे थे, बादशाह खुद ही पूछ लेगा क्यों काटे थे। इनके हीले को सही तौर पर जानने वाला मेरा परवरदिगार ही है। बादशाह ने पूछा, और तो इस वक्त का सही वाक्या क्या है, जब तुम दाव फरेब करके यूसुफ को इसकी दिली मंशा से बहकाना चाहती थी। उन्होंने साफ साफ जवाब दे दिया, माशाल्लाह, हमने यूसुफ में कोई बुराई नहीं पाई। फिर तो अजीज़ की बीवी भी बोल उठी कि अब तो सच्ची बात निथर आई, मैंने ही इसे वरगलाया था इसके जी से, और यकीनन वो सच्चों में से है। यूसुफ ने कहा, ये इस वास्ते कि अजीज़ मिस्र जान ले कि मैंने इसकी पीठ पीछे खयानत नहीं की, और ये भी कि अल्लाह दगाबाजों के हथकंडे चलने नहीं देता। बहुत से नुक्ते हैं इसमें तदब्बुर और अमल के। पहले तो ये दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका अन अशरिका बिका व अना आलम व अस्तग़फिरुका लिमा ला आलम। अल्लाह, मैं तेरी पनाह में आता हूँ इस बात से कि मैं शिर्क करूँ तेरे साथ जबकि मैं जानता हूँ, और अस्तग़फार करता हूँ इससे जिसको मैं नहीं जानता, यानी मेरे वो भी गुनाह जिनको मैं नहीं जानता। इससे इंशाल्लाह आप शिर्क से भी पाक रहेंगे और गुनाहों से भी। लोगों को इल्म सिखाने के साथ इनकी तरबियत का भी इख्तमाम कीजिए, जैसे कि यूसुफ ने किया। आपका कोई हक आपको ना मिल रहा हो, हुआ कभी? आप कहेंगे अक्सर। आपका कोई हक आपको ना मिल रहा हो तो अक्लमंदी के साथ जायज़ तरीका इख्तियार करके इसे हासिल करें। यूसुफ अलैहिस्सलाम से ये सीखा हमने। रहनुमाई, अल्लाह ताला की तरफ दावत देने के लिए मुनासिब मौके से फ़ायदा उठाएं। यदि पहले नहीं दिया, खिला पिला कर फिर दिया, खाने के इंतज़ार में तबलीग कर दी। शैतान की चाल और धोखे से अल्लाह की पनाह मांगनी है। तकवा का इंजाम खैर है जबकि गुनाह और फहाशी का इंजाम जिल्लत है। कल अगर शौहर के सामने इकरारे जुर्म कर लेती, बात ख़त्म हो जाती, वहाँ नहीं अदालत में आके सब के सामने उसको कहना पड़े कि मैं ही मुजरिम थी। तो छोटे जुर्म के साथ छोटी सज़ा, बड़े जुर्म के साथ बड़ी सज़ा। गौर व फिक्र की बातें, अल्लाह ताला की तरफ से मिलने वाली तौहीद और ईमान की नेमत पर शुक्र गुज़ार रहना है। अल्लाह जिन कामों की कुदरत रखते हैं, इन कामों में इनसे मदद मांगना ईमानी कुव्वत के ख़िलाफ़ नहीं, और दुनिया और आखरत की हर भलाई सही इल्म के सबब से ही हासिल होती है। अल्लाह ताला हमें आफ़ियत में रखे। इस पूरे को अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रिलेट कर कर देखें तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाप होने के नाते, मर्दों में तो किसी के बाप ना बन सके, जब बने तो वो बच्चे बचपन में ही दुनिया से चले गए, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक बाप होने के नाते हमें दिखता है अपनी बेटियों और बेटियों के बच्चों के साथ। तो आइए ज़रा आपका अपने बच्चों के बच्चों के साथ क्या मामला था, उसका एक वाक़ा सुनाती हूँ। आज की स्टोरी क्या है, इन्हें जब भी देखा आंखें बेख्तियार बहने लगीं। अल्लाह के रसूल बच्चों से बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। यह आपका अला अखलाक था कि आप बच्चों को चूमते, इनको गले लगाते और इनसे बातें करते थे। आप अपने बारे में क्या कहते हैं, अपने बच्चों को चूमते हैं कि दूसरों के? बच्चों से मोहब्बत करनी चाहिए। आप अपने नवासों के साथ बतौर ख़ास बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। अल्लाह के रसूल बाज़ुकात दिन के पहले पहर अपने बाज़ रिश्तेदारों और साथियों के घरों में तशरीफ़ ले जाते। अबू हुरैरा से एक वाक़या है, कहते हैं कि मैं एक दिन मस्जिद नबी में बैठा था। आप सब ज़रा विजुलाइज करें, कहते हैं कि मैं मस्जिद नबी में बैठा था, दिन रोशन हो चुका था, आपने मेरा हाथ पकड़ लिया और इस पर कदरे दबाव डालकर मुझे एक तरफ चलने का इशारा किया। मैं आपके हमराह चल पड़ा। अल्लाह के रसूल का रुख अपनी बेटी सैयदा फ़ातिमतुज़्ज़हरा के घर की तरफ था। इन दिनों फ़ातिमा मस्जिद नबी के मशरक में वाक़े बनू कैनका के बाज़ार के गिरदो नवाह में रिहाइश पजीर थी। पता चला कि बाप बेटियों के घर जा सकते हैं। पता नहीं कहाँ से ये बात आई कि माँ बाप बेटी के घर का पानी नहीं पी सकते, ये मुसलमानों का अकीदा नहीं है। खैर, बनू कैनका का ये बाज़ार बकीउल गरकत की तरफ थी, यानी जन्नतुल बकीत की तरफ था। अबू हुरैरा कहते हैं कि हम दोनों खामोशी से कोई गुफ्तगू किए बगैर बाज़ार के करीब से गुजरे। अल्लाह के रसूल बाज़ार में दाखिल हुए, इसे एक नज़र देखा, फिर वहाँ से चल दिए, यानी रुके नहीं। मैं भी आपके साथ साथ था। आप फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर तशरीफ़ लाए, सहन में तशरीफ़ फरमा हुए और इरशाद फरमाया, ऐना लुका, जैसे आप कहते लुका, छोटू किधर है, छोटू किधर है। फिर तीसरी बात कहा, छोटू किधर है। और आपके ये अल्फाज अपने नवासे हसन बिन अली के बारे में थे। क्या मतलब है, नेक शख्स बच्चों से प्यार कर सकता? अल्लाह के नबी नेक थे, दीनदार थे, तो बच्चों को अब छोटू कहेंगे? अबू हुरैरा कहते हैं कि हज़रत फातिमा अपने साहबजादे को तैयार कर रही थी, इसलिए कोई जवाब ना आया। हमें अंदाज़ा हो गया कि वो हज़रत हसन को नहला कर अच्छा लिबास पहना रही हैं। रसूलुल्लाह और मैं थोड़ी देर के बाद वापस आ गए। जब हम मस्जिद में आए तो अल्लाह के रसूल मस्जिद में तशरीफ़ फरमा होने के बाद फिर फरमाने लगे, ऐना लुकाओ, ऐना लुकाओ, छोटू किधर है। थोड़ी देर गुजरी कि हज़रत हसन अपने गले में हार पहने हुए दौड़ते हुए आए। रसूलुल्लाह ने प्यारे नवासे को देखा तो अपने बाजुओं को खोलते हुए यानी वेलकम करते हुए हक देते हुए इस्तकबाल फरमाया। हज़रत हसन ने भी अपने बाजू फैला दिए और कहा ऐसे, यानी क्या कहा, ऐसे करके दिखाया ना आपको। फिर वो अल्लाह के रसूल की गोद में कूद गए। आपने हसन को चूमा, उन्हें अपने सीने से लगाया। इधर हसन अपने नन्हे मुन्ने हाथों से दाढ़ी मुबारक से खेलने लगे। रसूलुल्लाह ने हसन रज़ी अल्लाह अन्हो को चूमना शुरू कर दिया। फिर हसन के लिए दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु व अहिब्बुहु व अहिब्बा मन युहिब्बुहु। याद कीजिए ये दुआ, ए अल्लाह मैं बेशक इससे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत फरमा, और जो इससे मोहब्बत करे इससे भी मोहब्बत फरमा। अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने ये दुआ 3 मरतबा फरमाई। ये बुखारी की रिवायत 5884 मैंने आपके सामने पढ़ी। तो ज़रा सा सोचिए, अबू हुरैरा एक नाना और नवासे के दरमियान मोहब्बत के इस मंज़र को हमेशा याद रखते हैं और दुआ के इस हिस्से को व अहब मैं युहिब्बु इसको कभी नहीं भूले कि जो हसन से मोहब्बत करे अल्लाह भी उससे मोहब्बत फरमाए, और हसन से फिर मोहब्बत करते थे अबू हुरैरा ताकि अल्लाह की मोहब्बत को पाए। जब कभी हज़रत हसन को देखते तो अकीदत और मोहब्बत की वजह से इनकी आंखों में आंसू आ जाते। आप और मैं अपने आप पे गौर करें, बल्कि अगर हदीस के अल्फाज अरबी में देखें ना, तो मा राई तो हसनन कत्तु निल्ला फादत ना दमुअन, जब भी देखते हसन को तो इनकी आंखों आंसुओं से भर जाती। ये मसलन बाजार में भी रिवायत मौजूद है। तो ज़रा से अल्लाह के नबी के बाप और नाना होने और दादा होने, और अगर बेटा कोई होता जिंदा तो उसके बच्चों के नाते से पोतों के साथ मामला करते हुए देखिए, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आप रसूल भी थे, हादी भी थे, कुदवा भी थे, रहनुमा भी थे, सैयद भी थे। आप इतने मसरूफ़ होने के बावजूद अपने नवासों के साथ मोहब्बत करते, उनको मिलने के लिए घर जाते, बल्कि एक दिन ऐसा हुआ कि आप हज़रत हसन को चूम रहे थे तो बनू तमीम का सरदार अक्रो बिन हाबिस उस मजलिस में मौजूद था। वो मक्का मुकरमा के वक्त मुसलमान हो गया था, बाद में बद्दू था, सरदार था, हुनैन और ग़ज़वा ताइफ में भी शरीक था। अल्लाह के नबी ने इसको ग़ज़वा हुनैन में से 100 ऊँट दिए थे और मौलफत क़ुलूब में शामिल किया और बाद में फिर मुसलमान हो गया। बद्दू लोग ज़रा खुरदरे थे उस दौर में, ख़ास तौर पर खुरदरे सख्त, क्योंकि जानवरों में रहता हुआ बंदा अब ऐसा ही हो जाता है कभी कभी। सहरा नशीन लोग अपने बच्चों से कम मोहब्बत करते थे। जब उसने देखा कि अल्लाह के नबी अपने नवासे को चूम रहे तो कहने लगा, इन्ना ली अशरतुम मिनल वलद माँ कब्बल तो मिन हूँ महदा, मेरे तो 10 बच्चे, मैंने तो कभी किसी को नहीं चूमा। आपने उस बद्दू सरदार को देखा और फरमाया, मल्ला यरहम ला यरहम, जो दूसरों पर रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाएगा। तो ये था अल्लाह के नबी का बच्चों और बच्चों के साथ प्यार। तो अल्लाह ताला हम सबको भी इसी की तौफीक दे। आखिर में हर दिन की तरह मतरूक सुन्नतों में से एक सुन्नत जिस पर आज अमल नहीं, और वो क्या है कि हम खाते हैं, पीते हैं, बातें करते, नक्स निकालते, लेकिन खाने के बाद की दुआ नहीं पढ़ते। और वो कौन सी है? मास बिन अनस से रिवायत है, अल्लाह के नबी आपने फरमाया, जो शख्स खाना खाकर ये दुआ पढ़ ले, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत अमनी हाज़त तआमा ورزقنی ہی من غیر حول منم ولا قوت غفر له ما تقدم من ذنبه. حمد و ثنا اور تعریف ہے اس اللہ کی جس نے مجھے یہ کھلایا اور بغیر میری کسی طاقت اور زور کے اسے مجھے عطا کیا, تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا. ابن ماجہ کی روایت 3285. دیکھیے کتنی بڑی خوشخبری ہے, پچھلے گناہ معاف ہو رہے ہیں جو آپ عمرہ کر کے اور دوسرے کاموں کے ذریعے کرواتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان دعاؤں کا اہتمام کرنے والا بنائے, بچوں کی تربیت میں یہ چیز شامل کریں کہ ان کو یہ دعائیں سکھائیں. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.